इस मलकियत को भी समझ लीजिए। आप देखिए कि कोई किसी का मालिक है और यौम दीन है, बदले के दिन। लफ्ज़ पहले मालिक को देखे, ये क्या बात हुई? दुनिया में किस चीज़ का बंदा मालिक होता है? किसी चीज़ का होता है ना। जैसे मिसाल है कि मैं इस कप की मालिक हूँ, ये कप एक चीज़ है ना, लेकिन अगर मैं घड़ी देखूँ तो मैं कहूँ कि 1:44 हो गए, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं 1:44 PM की मालिक हूँ। समझ रहे हैं? वो तो टाइम ड्यूरेशन है। यहाँ क्या है? यौम। ये तो अल्लाह वक्त की बात कर रहे हैं, बात समझने की है। इसको समझ लीजिए, वाला असरिन अल इंसान अलफी खसर, सूरत असर से आप इसको समझेंगे। असल चीज़ ज़माना है जो तेज़ी से पिघलता जा रहा है। कहते हैं ना, हमारे हाथ में ज़माना है। मालिक की यौम कहकर, दिन कहकर अल्लाह ने क़यामत के दिन की ग्रिप अपने हाथ में ले ली कि आज सब कुछ मेरे हाथ में। और आपको पता है कि यौम के बाद दीन क्यों है? दीन लफ्ज़ क्या है? दीन हम रिलीजन को कहते हैं ना, हालांकि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है आपको तो पता होना चाहिए। सूरह बकरा की सबसे लंबी आयत, आयते दैन। दैन कहते हैं कर्जे को। तो क्यामत को यौम दीन क्यों कहा? उस दिन हमारे बोझ कर्जे अदा होने हैं। ये सिर्फ क्यामत के लिए नहीं आता। अरब लोगों से कर्ज लेते थे, फिर जिस दिन उस कर्ज की वसूली का दिन होता ना, उसको यौम दीन कहते थे कि आज देन वसूल होना है। और देन याद है ना आपको कि जिसमें टाइम बाउंड हो, एक कर्ज भी लफ्ज़ अरबी का है लेकिन देन भी है। मालिक यौम दीन से यहाँ क्या पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना ताला क्यामत के दिन बस हमारे कर्जे लौटाएगा। अल्लाह अकबर, कौन से कर्जे? वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये जो नेकियों और बदियों की सूरत में हम आगे भेज रहे हैं ना, ये अल्लाह अपने ऊपर कर्ज ले रहा है। और वो कहते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना, क़यामत के दिन हमें वही मिलेगा जो आज इस दुनिया में कर रहे हैं। अब इसको भी समझिए कि अल्लाह ताला की ज़ात क़यामत के दिन हमारे कामों को कैसे संवारेगी। अब इसको यूँ समझिए कि जैसे आप अपने ऊपर लीजिए, हम सबका एक रिजल्ट डे था, पाकिस्तान में ऐसे आता था ना, हमारे रिजल्ट निकलते थे। क्या किया जाता है? रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं, फेल पास टिक मार्क लगते हैं, फिर नंबर्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप जमा करके देख लीजिए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें हमारी रिपोर्ट कार्ड्स देगा। क्या दिल चाहता है? हमारा रिजल्ट कौन बनाए? हमारा अपना टीचर बनाए। अक्सर आपने देखा होगा कि मैट्रिक में बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, होता कि नहीं होता? उसमें क्या होता है, मैंने खुद देखा है अपने इर्द गिर्द कि वो लोग जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आते थे, बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई पोजीशन ही नहीं आई। वजह क्या है कि आम दिनों में अपना टीचर पेपर चेक करता है और बोर्ड के एग्ज़ाम में दूसरा टीचर होता है। हो सकता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन हम इम्तिहान से एक दिन पहले आप बीमार हो गए, आपका पेपर ठीक नहीं हुआ। अब उस गैर बंदे को तो नहीं पता आपकी पिछली क्वालिफिकेशन, तो वो तो सिर्फ उसकी बेस पे करेगा, लेकिन टीचर बहुत कुछ देखेगा। वो तो फौरन उसका पिछला रिकॉर्ड निकलवा लेगा, समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये पूरा साल बच्ची पूरे नंबर लेती रही है। तो अल्लाह ने अपने हाथ में हमारा हिसाब रखा है, ये भी अल्लाह का एक इनाम है, हमें गैरों के हाथ में नहीं डाला। यहाँ वो सुफियान सॉरी का कॉल याद कर ले कि क़यामत के दिन अगर ये कहा जाए कि अल्लाह के बदले तुम्हारा कोई और ले ले हिसाब, तो क्या तुम चूज़ करोगे अपने माँ बाप को? तो कहा, नहीं, मैं अपने माँ बाप को चूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रब मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। तो हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो रब है, वो आलमीन का रब है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक यौमिद्दीन है। ये सब करके बंदा कहता है, या का नाबुदू व या का नस्ताईन, ये है मेरी आपकी बंदगी। ए अल्लाह, ख़ास तेरी ही बंदी हूँ, तेरी इबादत करती हूँ और ख़ास तुझसे ही मदद तलब करती हूँ। मैंने तीन लफ्ज़ बोले आज इबादत के नाम पे। इबादत लफ्ज़ में क्या कुछ है, यानी बंदगी के अंदर क्या आता है? इबादत, अबदियत और अबूदियत, इनके दर्जे समझ लीजिए, बहुत आसान है, आप इजीली समझ जाएंगे। हम ये कहते हैं या कनाबुदू में कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज रोज़ा हज सब तेरे लिए करते हैं। ये क्या होता है? इबादत। कभी आपने किसी से ये नहीं सुना होगा कि मैं शैतान के लिए 2 नफिल पढ़ूँ या मैं किसी बुत को सजदा करूं। ये तुम सब समझते ना इबादत का मानी, कल्चर में आम है, बड़ा नमाजी रोजेगार है। किसी लड़के की तारीफ करें, कहते हैं बड़ा हाजी नमाजी है, वो तो रोज ही जुम्मा पढ़ता है। आपको सुनाया था एक माँ का जज्बा, मेरा बेटा इतना नेक है, रोज जुमा पढ़ता है। ऐसी माएँ होती हैं जज्बात में आके कह देती हैं। लेकिन बहरहाल ये है एक हिस्सा। अगर आप किसी बेटे को, बेटी को, शौहर को, बीवी को, खुद को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात करता देखें तो वो बंदगी के फर्स्ट स्टेप पे। तीन स्टेप्स होते हैं बंदगी के। पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ गए, कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई रोज़ा नहीं छोड़ा, उम्रा भी किया, एक साल में हज भी कर लिया, यानी जितने वर्शिप के मोड्स हैं वो सारे के सारे पूरे कर दिए, तो आप अभी सिर्फ 1/3 ऑफ अबूदिया पे आए। ये पहला दर्जा है। उसके बाद दूसरा दर्जा, और वो क्या है? अबदियत। ये सब करके भी खुद को अल्लाह का गुलाम बनाना है। देखिए, एक है इबादत की और रोब डाला, क्या मुसीबत है, फिर नमाज पढ़ा ली, फिर मौलवी साहब बोल उठे, बुड़बुड़ करते हुए वजू कर रहे हैं, क्या करें, वजू नहीं ठहरता। आपने इबादत तो की लेकिन आपके अंदर अकड़ बहुत है, आप अब्द नहीं बने, समझ रहे? ये ऐसे जैसे मैं आपसे कहूँ ना पानी लाए, तब एक है वो लाएगा पानी बड़े सलीके से प्लेट में ला के, ऐसे रखेगा कि आवाज़ भी ना आए, और दूसरा आप पानी मांगे वो ला के चले। फ़र्क क्या दोनों में? पहले ने इबादत भी की और अब्द भी बना। अल्लाह के आगे अगर इस मिसाल को समझाएं, काम भी किया, अल्लाह की बात मानी भी, लेकिन साथ अपने आप को आजिज़ भी समझा, और दूसरे ने काम तो कर दिया, इबादत तो की, नमाज तो पढ़ी, लेकिन दिल से अल्लाह का बंदा नहीं बना। ऐसे ही जैसे हम नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन अमली ज़िंदगी में हम बिल्कुल कुछ और बन जाते हैं। नमाज रोज़ा करके अमली ज़िंदगी में अकड़ते रहना, गोया की इबादत तो की लेकिन अबदियत नहीं। तीसरा दर्जा सबसे ऊपर है। ये तीन दर्जे ही मुख्तलिफ रंगों में ढलेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। और वो क्या है? अबूदिया। इबादत वर्शिप थी, कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अबदियत थी स्लेवरी, खुद को अल्लाह का गुलाम समझा। अबूदिया क्या है? सबमिशन है। नमाजें भी पढ़ो, आजजी भी लाओ, और नमाज जिससे रोकती है उससे रुको भी। इन सलात अनिल फख्शाई वल मुनकर, यानी अमली ज़िंदगी में रबूबियत के तकाज़ों को पूरा करना अबूदियत होती है। और आप देखिए, अलूहियत है रब की, इलाह से अलूहियत है, अब्द से अबदियत है। अल्लाह हमेशा इलाह रहेगा, इसी तरह बंदा हमेशा अब्द रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होती। यानी अल्लाह में कुछ भी ना दे ना आपको, मुझे अल्लाह कोई नेमत ही ना दे, सारी ले ले, वो फिर भी इलाह है। और मैं अल्लाह का हक अदा करूँ ना करूँ, नमाज पढ़ूँ ना पढ़ूँ, कुछ भी मैं काम ना करूँ, मैं फिर उसकी बंदी ही रहूँगी। तो आप कह सकते हैं आखिरी जुमला इस बारे में आज का, कि अल्लाह की शान अलूहियत है और बंदे का मुकाम अबदियत का है। इसी से बात पता चलती, ये समझ आ गए ना, तो या का ना बुदू। आज जाके घर में खुद पूछिएगा अपने आप से, क्या हकीकत में अल्लाह की बंदी हूँ? और जब बंदी बन जो गई तो वही या का नस्ताइन, मदद भी तो फिर आपसे ही मांगूंगी। एक बच्चे ने बाप से कहा, अबू मुझे साइकिल दिला दे। बाप गुस्से में था, कहता चलो भाग जाओ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं इसलिए नहीं कमाता, भाग जाओ। बच्चा वहाँ से उठा, थोड़ी दूर जा के अपना मुँह छुपा के रोने लगा। पहले तो बाप गुस्से में था, थोड़ी देर बाद उसका दिल पिघला, तो क्या जाके देखो करता क्या, क्या कह रहा है। तो करीब गया ना तो बच्चा रो रहा था, भुसक भुसक के कह रहा था, अब्बू आप ही तो मेरे अब्बू हैं, आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। इस बात को सुन के बाप का दिल पसीजा और उसने बच्चे को साइकिल दिला दी। ये है या का ना बुध हुआ, या का नस्ताई, कह के तो देखें अपने रब को, अल्लाह मैं किससे मांगूँ, मैं किधर जाऊँ, अल्लाह मेरा कौन है। भोले बन जाए, ऐसे बन जाए जैसे आप अल्लाह किस वक्त किसी को जानते ही नहीं। हम इंसानों से ये जुमले बड़े बोलते हैं, फिर मैं किससे मांगूं, फिर मेरा कौन कफील है, इस मुल्क में मेरा कौन है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। पहली तीन आयतों में अल्लाह का मुकाम और दो आयतों में बंदे का, इय्याका एक आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन एक आयत। मुफस्सिरीन कहते हैं ये दो आयतें भी हो सकती थी, अगर आप पीछे वाली आयतों पर गौर करें ना, देखिएगा छोटी छोटी आयतें ना, तो ये भी तो हो सकता था ना, या का ना बुदू एक आयत, फिर दूसरी आयत शुरू होती वही या का नस्ताइन। लेकिन बंदे की औकात को छोटा करने के लिए दोनों बातें एक में डाल दी तो कुछ भी नहीं है, वही मैरिनेशन, कुछ भी नहीं है, एक नुक्ते की जैसी मेरी जात है। यहाँ तक अल्लाह और बंदे की बातें थी, अब मांगा जा रहा है। मांगने की चीज़ें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं तो वो मांगूंगी कि जिसके बाद दुनिया की हर चीज़ नेमत बनेगी, और वो है इह दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा। دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. گائیڈنس از اے گفٹ. ہدیہ لفظ اردو میں سنتے ہیں نا, وہی لفظ ہدایت ہے. ہدایت ایک تحفہ ہے, بن مانگے نہیں ملتا. بندہ اللہ سے ہدایت مانگے پھر ملے گی, تڑپے روئے چیخے چلائے پھر ہدایت ملے گی. اور آپ نخرے کریں, آپ اکڑیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہدایت کو دھمکیاں دیں, اللہ کہتا تم خود ہی جاؤ, چھٹی کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے. یاد رکھیے, اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہم اللہ کے ساتھ ہدایت والا تعلق رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازتا رہے گا, اور جتنی ہدایت مانگیں گے اتنی ملتی جائے گی. اگر ہدایت مانگنی چھوڑ دی نا تو وہیں رک جائے گی, اور آہستہ آہستہ جو ملی بھی ہے نا وہ بھی چلی جائے گی. ہدایت کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ انسان کے مال کی طرح, منی پہلی ہوتی ہے اور آتی رہتی ہے نا, تو آپ خرچ کرتے رہتے ہیں تو سائیکل چلتا رہتا ہے. کبھی پیچھے سے منی آنی رک جائے, کوئی بھی جس کا کوئی بزنس ہے یا پیڑ لیتا ہے یا جاب ہے, کچھ بھی سوچیے, جتنے پیسے ہوتے ہیں نا دن بہ دن خرچ ہو کے پھر آخر میں دل گھٹنے لگتا ہے کہ اب تو آگے سے آ ہی نہیں رہے. اتنی بات سمجھ رہے, ہوتا ایسا کہ نہیں؟ سمپل سی بات ہے. اور آتے رہے تو پچھلے اگلے سارے ملتے رہتے ہیں. اسی طرح ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے مزید ہدایت لینی ہوتی ہے. یہ ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. وزدناہم ہدا. یہ ہدایت کا سفر ایسی ہے جیسے آپ کسی سلوپ کے مڈل میں ہیں. سوچیے طرح سے, کوئی پہاڑی ہے جو مڈل میں ہے نا, آپ ایسی کوئی بھی آڑی چیز دیکھیں اور آپ اس کے مڈل میں ہے نا, یا آپ اوپر جائیں گے یا آپ نیچے گریں گے, وہاں نہیں کھڑے ہوں گے. ہدایت کی سیڑھی پہ ایک دفعہ قدم رکھنے کے بعد صرف دو چوائسیز ہیں آپ کے پاس, مزید اوپر, اور اس کے لیے آف کورس اسٹرگل, فور ویل گاڑی, جان لگانی پڑے گی. ذرا سا کیئر لیس ہوں گے تو گاڑی کے بیک گیئر میں آ کے آپ کو وہاں بھی نہیں چھوڑے گی. پھر جب بندہ گرتا ہے تو وہاں نہیں گرتا جہاں پہلے ہوتا ہے, اس سے بھی نیچے گرتا ہے. تو اللہ سے بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے انبیاء کرام تک زندگی کے آخری دن تک یہی دعا مانگتے رہے کہ چل رہے ہیں تو اللہ چلاتا رکھنا, کھڑے ہیں تو چلا لے, اور اگر عمل نہیں ہو رہا تو کرا لے. اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں, لیکن انسان اس کے لیے کچھ رول ماڈلز دیکھتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا, نہ کہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں. یہ ہے رب العالمین کی آخری بات. اللہ تین قسم کی مخلوق کا رب ہے, وہ جو اللہ کی بات مانتے ہیں, ربوبیت کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور ابدیت کی شان رکھتے ہیں, ان کو کہا گیا انمت علیہم. اس میں انبیاء کرام, صالحین, شہداء اور نیک لوگ ہیں. اس کے بعد دو لوگ رہ جاتے ہیں, مغدوب اور ضالین, یعنی جن کو ہدایت ملی تو انہوں نے اس کی ویلیو نہ پہچانی, اور دوسرے وہ جو ہدایت سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کوئی بجلی سے ڈرتا تھا. نہیں نہیں, ہدایت مل گئی تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا, پھر جینے کا کیا مزہ؟ اچھا ذرا اس کی شادی ہو جائے تو ہدایت آئے. اور کچھ کو تو غم لگ جاتا ہے, اللہ 16 سال کی عمر میں کیوں ہدایت مل گئی, شادی تو کم از کم ہو جاتی ہے اپنی مرضی کے طریقوں سے. نتیجہ کیا کہ انسان پھر ایسے وقت میں ہدایت کی قدر نہیں کرتا. تو جو جس سفر پہ زندگی کے, آپ سب اپنی ایج لکھیں, اگر آپ اس کلاس میں سب سے چھوٹی ہیں تو آپ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں, کیونکہ آپ کو وہ نعمت دوسروں سے پہلے مل گئی جو بہت سارے لوگوں کو زندگی کے آخری موڑ پہ جا کے ملتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہم سب کو ہدایت کی منزلوں کو آگے سے آگے جا کر نبھانے والا لے دے. آج کی نماز میں اس سورۃ فاتحہ کو غور کرنا ہے, اور کیا کریں گے, تدبر بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب پہ اپنا رحم کرے اور ہم خیر اور عافیت کے ساتھ لیں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے دوسرے ساتھی بھی ہدایت کی سیڑھی پہ سوار ہوں تو آپ ان کو ابھی سے اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.